आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आयु कपिल और आज हम अपने क्लास 8th के सिविक्स के चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हम पेज नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले गिवन है, एक एक्सरसाइज गिवन है, उसको देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सरसाइज और अब इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या आना चाहिए। लेट अस रिकैप द रीजंस व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज बाय रिकॉलिंग द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट यू हैव रेड अबाउट थ्रू दीज एग्जांपल्स। अभी तक हमने पार्ट वन में सारे एग्जांपल्स पढ़े थे जो जो कि बताते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल पहला था नेपाल का, जिसमें उन्होंने अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था जब उन्हें डेमोक्रेसी मिली थी थ्रू पीपल्स मूवमेंट। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूटिव रूल बताता है कि इट लेज डाउन द आइडियल्स दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू लिव इन। इसके थ्रू हमें पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा आइडियल्स ले डाउन कर रखे, ऐसे आइडियल्स, ऐसे सिद्धांत बनाए हैं, ऐसे सिद्धांत हमें प्रोवाइड किए हैं जिनके मुताबिक हम सोच सकते हैं, हम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे समाज में रहना है। सेकेंड है सुरेश, द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक्स ऑन अनिल हिज क्लासमेट। तो सुरेश वॉज एन अथॉरिटी, तो उसने अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा उठाया। तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ टिरनी टू द पर्सन हु इज इन अथॉरिटी। यानी कोई भी जो इंसान अथॉरिटी में है वो अपने अथॉरिटी का, अपनी पावर्स का गलत फायदा नहीं उठा सकता, अनफेयर यूज नहीं कर सकता। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रूल। द गर्ल्स थर्ड एग्जाम्पल था, द गर्ल्स डू नॉट, वो गर्ल्स थी जो कि माइनॉरिटी में थी जिन्हें बास्केटबॉल खेलना था, तो द गर्ल्स डू नॉट गेट टू प्ले बास्केटबॉल बिकॉज द बॉयज आर इन अ मेजॉरिटी इन क्लास। और बॉयज को क्रिकेट खेलना था, बॉयज मेजॉरिटी में थे, तो बॉयज का माना गया रूल, बॉयज का डिसीजन माना गया क्योंकि टीचर ने कहा था आप हैंड्स अप करो और जो जितने ज्यादा नंबर होंगे हैंड्स के वो वाला डिसीजन माना जाएगा। पर जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि नहीं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों एक ही तरह के पार्ट्स को एंजॉय करेंगे, दोनों को एक तरह का ही अधिकार होगा। मेजॉरिटी को अगर हम कुछ फायदे देते हैं तो वो माइनॉरिटी को भी मिलेंगे, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर अपनी अपनी नहीं चला सकता। फोर्थ एग्जांपल क्या था, शबनम डिसाइड्स टू रिवाइज हर चैप्टर्स इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी। शबनम ने कहा था कि यार मैं अपने चैप्टर रिवाइज करूंगी ना कि टीवी देखूंगी, बिकॉज शी थॉट ऑफ द लार्जर प्रिंसिपल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसी एग्जाम्पल से हमें क्या समझाता है कि वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन, जिसमें सब बिलीव करते हो, राष्ट्रहित हो, हमेशा बड़े लॉन्ग टर्म में, एक वाइड ब्रॉड एस्पेक्ट में हमें सोच के डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी जरा सी खुशी के लिए हम कुछ गलत कर दें। अब आगे बढ़ते हैं, अब शुरू होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में पढ़ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता चलेगा कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप जिंदगी जी रहे हो इस वक्त, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके कुछ भी खा के आ सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी तरह का बंधन नहीं है, आप जब चाहें तब उठ सकते हैं, आप जब चाहें जो चाहें वो खा सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं, ना चाहें तो कोई भी धर्म नहीं मान सकते, मतलब आपके ऊपर किसी भी तरह का बंधन नहीं है, आपको पूरी इंडिपेंडेंस मिली हुई है। तो वो सब एक्चुअली कैसे मिली वो हम पढ़ेंगे थ्रू आर की फीचर्स ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक पिक्चर गिवन है, देयर वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ईच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल एंड देयर वाज अ सिंसियर एफर्ट टू कॉम्प्रोमाइज एंड रीच एन एग्रीमेंट थ्रू कंसेंसस। द अबव फोटो शोज सरदार वल्लभ भाई पटेल, अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिखाए गए हैं इस पिक्चर में। अब देखिए, इतने से जो मैंने लाइंस पढ़ी उसमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। पहला कि जो हमारे लीडर्स थे उस टाइम पे, जिनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबल हुआ, एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हु वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनमें यूनिटी थी, बहुत ज़्यादा एकता थी, वो हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिए और कॉम्प्रोमाइज किए कि हर तबके के इंसान के अधिकारों का शोषण ना हो, इसमें हर इंसान की आवाज़ इस कॉन्स्टिट्यूशन में पहुंच सके, सबकी मांगों और अधिकारों का ध्यान इस कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए, सबकी सर्वसहमति से ये बनाया गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists have devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had had very little role in making. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. What remained to be done then was to work out the ways in which a government, democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person, but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. Now they are saying, वो कहते हैं कि Britishers हम पर राज करते थे, हम सबको पता है, India was a colony of Britishers. तो India झेल चुका था. क्या झेल चुका था कि जब कोई शासन करता है तो तब कितना दुर्गति रहती है, वो इंसान अपनी चलाता है, हमें बंधन में रखता है। तो इंडियंस वर सो श्योर कि हमें अब एक डेमोक्रेसी चाहिए, हमें अब किसी का एकाधिकार नहीं चाहिए हमारी स्टेट पर या हमारी कंट्री पर जो हमारे लिए सोचे, हमें चाहिए एक डेमोक्रेसी जहाँ पे काफी लोग हों, अब हमारे अलग अलग लोगों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स हों जो हमें रिप्रेजेंट करें और फिर सबकी सहमति से रूल्स बनाए जाएं ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो भी कहते हैं कि इस तरह इंडियंस ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, लगभग 300 लोग थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और 3 साल में लगभग 1946 से 1949 तक हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. अब ये कहते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना आम बात नहीं थी, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, अलग अलग संप्रदाय के लोग थे, वो इतनी ज़्यादा भिन्नता थी इंडिया के लोगों में कि उन सबको ही फिर आपको ध्यान में रखना है, आपको उन सब के अधिकारों और मतों को ध्यान में रखना है। तो ये एक ईजी काम नहीं था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। और उस वक्त जब जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, ब्रिटिशर्स सब लूट के जा चुके थे, बहुत शोषण हो चुका था हमारे देश का, तो इंडिया में गरीबी बहुत थी और ऊपर से एक गरीब कंट्री को चलाना है अभी आपको, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जो उस टाइम के लीडर्स थे हमारे, उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो कि एक गरीबी की मार झेल रहे देश को, अभी पैदा हुए देश को, अभी खुली हवा में सांस लेते हुए देश को ऊपर ले जाने का काम कर सके। The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about the future and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. अब इंडिया-पाकिस्तान का बंटवारा हो गया उस वक्त, कुछ princely state थी जहाँ इंडियन जो राजा थे, भारतीय राजा जो थे वो नहीं दे रहे थे, कुछ वो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे आज़ाद भारत में, तो उसका अलग अभी परेशानी बनी हुई थी कि उन लोगों को कैसे मनाया जाए। तो काफ़ी सारी परेशानियों में देश घिरा हुआ था और ऊपर से सोशो इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बहुत ही बेकार थी, सोशली इकोनॉमिकली गरीबी छाई हुई थी और हर इंसान जूझ रहा था ना अंदर से कि देश आज़ाद हुआ है, तो एक इंडिविजुअल बेसिस पे भी हर कोई परेशान था। All of these issues played on the minds of the members of Constituent Assembly as they drafted the constitution. और ये सारे ही points इसलिए Constituent Assembly के हर एक member के दिमाग में थे कि हमें इन सारे points को ध्यान में रखकर एक framework तैयार करना है। All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the constitution. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects our respect for maintaining diversity while preserving national unity. तो फिर उन्होंने इसलिए एक ऐसा हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो कि दो काम करता है, क्या कि एक तो डाइवर्सिटी भी मेंटेन करता है, जितनी भी डाइवर्सिटी भिन्नता अलग अलग तरह की जो भी डिफरेंसेस हैं हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में, उन सबको मेंटेन रखता है। वो ये नहीं कहता कि नहीं तुम उस कम्युनिटी को छोड़ के इस कम्युनिटी में आओ, नहीं, वो कहता है तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम जिस कम्युनिटी को मानना चाहते हो उस कम्युनिटी में रहो, तुम्हारे अधिकारों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। और दूसरा, डाइवर्सिटी को मेंटेन करते करते वो एक प्रिजर्व करता था नेशनल यूनिटी। भारत को क्या कहा जाता है कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी है डाइवर्सिटी में, सब डाइवर्स हैं, सब बहुत अलग अलग तरह के जगह से, भाषा से, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल वी आर ऑल आर इंडियंस, हम यूनाइट हैं, हम एक देश के अंग हैं, हम सब एक हैं। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज एम्फसाइजिंग द क्रूशियल रोल ऑफ द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और फिर हमें वही पता चला कि सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत सारे हमें मिले जिनके तहत हम अपनी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को अच्छा बेहतर बना सकते थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए लोगों के लिए काम किया गया और हमें ये अधिकार दिया गया कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज कर सकें। अब यहाँ पे जिन्हें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फ्रेम करने के लिए, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो थे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। इनकी पिक्चर गिवन है आपकी इसी पेज पर। तो ही participated in the Constituent Assembly and he helped the scheduled caste get some safeguard in the draft constitution. So he belonged to scheduled caste. और उनके साथ बचपन से अगर आप इनके जीवन का कभी इतिहास पढ़ें तो इनके साथ बहुत discrimination हुआ था क्योंकि he belonged to scheduled caste. तो बचपन से उनके साथ बहुत discrimination हुआ था क्योंकि वो एक scheduled caste से belong करते थे। तो इसलिए अब जब उन्होंने draft किया Indian constitution तो उन्होंने ध्यान रखा कि scheduled caste के लोगों के साथ कुछ भी अन्याय ना हो, उनके rights को safeguard किया जाए। But he also stated that although the laws might exist, scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of caste Hindu officers. He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil services. पर उन्होंने कहा कि अब भले ही मैं रूल्स बना दूं कि जो scheduled caste उनके खिलाफ कोई अन्याय नहीं होगा, पर उन रूल्स को जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो है हिंदू कास्ट, हिंदू ऑफिसर्स। तो इसलिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहा कि तुम लोगों को सिविल सर्विसेज में आने की ज़रूरत है, तुम गवर्नमेंट ज्वाइन करो, सिविल सर्विसेज में आओ ताकि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के लेवल पे ही तुम लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड द अबव मेंशनड कंसर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न्स विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यहाँ ये यही कहते हैं कि आगे अब जब हम आपको फीचर्स बताने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो पढ़ते वक्त आप ध्यान रखें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है और डाइवर्सिटी, यूनिटी और सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म इन सब को ध्यान में रखते हुए ही ये बना है और इंडिपेंडेंट इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए ये बनाया गया था। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण फीचर इसका आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, फेडरल वर्ड का मतलब होता है संघ, यानी पावर बिटवीन स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट एंड स्मॉलर लोकल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म गवर्नमेंट में क्या होता है, हमारा देश एक फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि फेडरलिज्म गवर्नमेंट में क्या होता है, एक नेशनल गवर्नमेंट होती है और उसके फर्दर पार्ट्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के। जैसे हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, यानी संघ टुकड़ों में बटा है, जो गवर्नेंस है वो टुकड़ों में बटी है, संघ बने हुए हैं। This is what is known as federalism. This refers to the existence of more than one level of government in the country. एक लेवल से ज़्यादा लेवल होना चाहिए गवर्नमेंट का एक कंट्री में for federalism to be established. जैसे हमारे यहाँ कितने लेवल्स हैं? सेंट्रल है, स्टेट है, फिर हमारा स्टेट के बाद म्यूनिसिपल है, फिर पंचायती राज है, यानी we have several levels of governance in our country. In India, we have governments at the state level and at the center. अब ये कहते हैं कि हमारे इंडिया में basically माने जाते हैं दो levels, state level और central level. पंचायती राज is the third tier of government. फिर पंचायती राज इन्होंने third tier बनाया government का, and you have read about this in your class 6 book, जिसके बारे में आपने class 6 में पढ़ा था। तो तीन टायर हैं हमारी गवर्नमेंट के। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास सेवेंथ। स्टेट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग आपने क्लास सेवेंथ में पढ़ी थी, एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अब हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे क्लास एट्थ में। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मेंट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट needed to be devised that did not involve any only person sitting in the capital of New Delhi and making decisions for everyone. Amara constitution ne nahi chahta ki Delhi mein, New Delhi mein jo hamare lawmakers baithe hain, jo hamari government ke main leaders baithe hain, wo hi sab kuch karte rahe, yani aapka representation hona chahiye, har ek जगह का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इंस्टेड इट वाज इंपॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। आप एक जगह दिल्ली में बैठ के आप पूरे देश के लिए रूल्स नहीं बना सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि अलग अलग एरियाज में क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अलग अलग एरियाज को पर्टिकुलरली गवर्न करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स बनाई गई कि हर एक एरिया की अपनी अपनी एक स्टेट की एक अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी जो उसके बारे में सोचेगी, उसके बारे में काम करेगी। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concerns require that all of these states follow the laws of the central government. और ये सारी states काफ़ी चीज़ों में independently work करती हैं, उनका अपनी मर्जी है, उन्हें अपनी state को जैसे चलाना है वैसे चलाएं, but जो national concern, जो एक पूरे राष्ट्र के चीज़ें, जो राष्ट्र के चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको पूरे देश को एक साथ लेके चलना है, वहाँ उन्हें अबाइड करना पड़ेगा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी राष्ट्रहित के लिए स्टेट्स को, वो मानना पड़ेगा, वहाँ स्टेट्स अपनी अपनी नहीं चलाएंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल्स द इशूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन इन एडिशन। और यहाँ पे अब इसने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक पूरी लिस्ट है जो कि बताता है कि हर एक टायर, तीन टायर हैं गवर्नमेंट के, स्टेट, सेंट्रल एंड पंचायती राज, तो हर टायर कैसे लॉ बना सकता है अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए। इन एडिशन यानी उन लॉज के अकॉर्डिंग ही, इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया है कि कहाँ से हर एक टायर को पैसा मिलेगा अपना अपना काम करने के लिए। Under federalism, the states are not merely agents of the federal government, but draw their authority from the constitution as well. तो इस तरह से states जो हैं वो एक subordinate नहीं हो जाती सिर्फ central government की, वो उसकी सिर्फ एक agent नहीं हो जाती, बल्कि वो अपने आप में autonomous है, यानी उनके पास भी power है, authority है, क्योंकि constitution उन्हें authority provide कर रहा है कि आपको भी fund मिलेगा, आपको अपनी state में जो करना है आप कर सकते हैं। All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. India ka har ek insaan governed hota hai kaise, un laws aur policies ke according jo ki ye levels banate hain government ke, ye levels jo laws banate hain hum logo ke liye, hum wo mante hain. यहाँ एक पिक्चर गिवन है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, श्री ए के अय्यर अ मेंबर रिमार्क दैट दिस वाज डन विद एन अबंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन एंड दैट एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल एंड द फुल बिलीव दैट इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज विल ब्रिंग एनलाइटनमेंट एंड प्रमोट द वेलबींग द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ द कम्फर्ट एंड द डिसेंट लिविंग ऑफ द कॉमन मैन। द फोटो बिलो शोज पीपल स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट देयर वोट्स। ये बताता है कि कैसे ये जो श्री ए के अय्यर थे, मेंबर थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने बताया है जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी, जिसके अकॉर्डिंग 18 साल से बड़ी उम्र में आप वोट डाल सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं। इसने इन्होंने बताया है कि कैसे ये, किस सोच के साथ ये चीज़ शुरू की गई, ताकि लोगों का फुल बिलीव रहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और एक सबके भलाई के काम हो सके, सबको सोचते हुए रूल्स बन सके। सेकंड हम देखते हैं की फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। योर क्लास सेवन बुक बिगन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वाज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजंस। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. ये बहुत ही बढ़िया फीचर है. सेकंड जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमारे पास एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. आप सबने देखा होगा इलेक्शंस होते हैं आपके शहर में, आपके गांव में होते होंगे, जहां पे आपके मम्मी पापा और बड़े लोग वोट डालने जाते होंगे. तो वो वोट कौन कौन डाल सकता है? आप तो नहीं जाते होंगे अभी वोट डालने. क्यों? क्योंकि एक रूल है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फ्रेंचाइजी. इसके अकॉर्डिंग 18 साल या उससे बड़ी एज का कोई भी इंसान वोट डाल सकता है. वोट क्यों डाला जाएगा? ताकि वो जिसे चाहे अपने उस रिप्रेजेंटेटिव, उस एक इंसान को सिलेक्ट कर सके कि हाँ, हमारे देश को, हमारे स्टेट को, या हमारे इस गांव को, हमारे इस शहर को, आपकी जो एरिया है उसको वो इंसान रिप्रेजेंट करेगा. और इस पॉइंट का सबसे बढ़िया फीचर ये है कि वोट फीमेल्स भी डाल सकती है, मेल्स भी डाल सकते हैं, किसी भी एज का इंसान डाल सकता है. अगर वो 18 साल से बड़ा है या 18 साल का है, उसको ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस धर्म से बिलोंग करता है, या कितना पढ़ा लिखा है, या फिर वो कौन सी भाषा बोलता है, ये सब नहीं देखा जाएगा. यानी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से. यानी कोई भी वोट डाल सकता है, क्योंकि सबको ये एक हक मिला हुआ है, सबका ये अधिकार है कि वो अपना इंसान, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो उन्हें दर्शाएगा पार्लियामेंट में, वो खुद चूज करें. थर्ड पॉइंट आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. दीज आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. The legislature refers to our elected representative. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of courts in this country. बहुत बढ़िया फीचर है ये भी. थर्ड फीचर सेपरेशन ऑफ पावर्स. हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसमें, हमारी गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि 3 ऑर्गन्स बटे होंगे गवर्नमेंट के. पहला होगा लेजिस्लेचर, दूसरा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव. यानी कि लेजिस्लेचर कौन होंगे? जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, जो हम इलेक्ट करते हैं लोग कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, वो लेजिस्लेचर के अंतर्गत आते हैं. एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो लॉज, जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स जो लॉज बनाते हैं, उन लॉज को काम में लाते हैं एग्जीक्यूटिव. उन लॉज को, उन पॉलिसीज को रन कराते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उनमें, उनको रन कराते हैं, उनको काम में, रियलिटी में, प्रैक्टिकली कराते हैं एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी क्या होते हैं? जुडिशरी क्या करते हैं? ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, ये डिसीजन लेते हैं. इसके बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे, इसी बुक में, बाद में. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3. कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना सही सिस्टम बनाया हुआ है ताकि ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के, ये अपना अपना काम करें, एक दूसरे के काम में दखल ना दें. पर ये तीनों का काम इस तरह का है कि इस तरह ये औरों के काम पे नज़र रख पाते हैं कि और दूसरा जो ऑर्गन है वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. एक पिक्चर गिवन है, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फियर दैट द एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग एंड इग्नोर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर. द असेंबली देयरफॉर इंक्लूडेड अ मेंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट एंड कंट्रोल द एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एज अ होल. इसमें एक मीटिंग चल रही है जिसमें ये डिसाइड किया है कि ऐसा ना हो जो एग्जीक्यूटिव है वो कुछ भी करने लगें अपनी मर्जी के मुताबिक, तो लेजिस्लेचर ध्यान रखे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ लिमिट ना हो जाएं. फिर एक ये गिवन है ब्लू बॉक्स, जिसमें स्टेट के बारे में कुछ डिस्कशन है, पढ़ते हैं. द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर. तो ये कह रहे हैं स्टेट जो वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है बच्चों. रेदर देन वी यूज स्टेट, वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज. द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शंस. द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सॉवरन पीपल who occupy a definite territory. अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट तो वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमें गवर्न कर रहे हैं, जो उस देश को चला रहे हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल लीडर्स हमारे हैं, जो कि इलेक्ट किए हैं हमने, जो वो लॉज बना रहे हैं और उनको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, और हम चाहें हमें नहीं उनका काम अच्छा लगा तो हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो चेंज हो सकती है, पर स्टेट क्या है? स्टेट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं यूज़ किया जाता। स्टेट एक अ पीस ऑफ लैंड है, जैसे भारत है एक स्टेट है, ये लोगों, और ये किससे बनती है? लोगों से, उस धरती उस ज़मीन के टुकड़े के जो लोग उस पे रह रहे हैं वो पूरा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट को, वो सॉवरन है, यानी उनका अपना सुप्रीम रूल है अपने आप पे, यानी वो किसी के बंधन में नहीं है। तो वो जो लोग हैं जो उस जगह पे रह रहे हैं, जो उनकी डेफिनेट टेरिटरी है कि ये जगह उन लोगों की है, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट को। वी कैन दस स्पीक ऑफ इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट एक्सेट्रा। इसलिए कंट्रीज को एज अ स्टेट, एज अ होल स्टेट रेफर किया जाता है, जैसे नेपाली स्टेट, इंडियन स्टेट। द इंडियन स्टेट हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन स्टेट है उसमें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट एंड स्टेट आर डिफरेंट। द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट जो है, जो एग्जीक्यूशन कर रही है हमारे लिए, वो एक पार्ट है स्टेट का, वो स्टेट अपने आप में नहीं है। द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद इट। तो जो स्टेट है वो गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा टर्म है और वो उसके जगह यूज नहीं किया जा सकता कभी भी। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट विद योर टीचर। तो अभी हमने देख लिया स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। अब इधर लिखे हैं 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर उससे पहले हम पढ़ेंगे जो इसके बगल में 4th पॉइंट डिस्कस हुआ है। बच्चों 4th पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। ये की फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The constitution thus guarantees the rights of individuals against the state as well as other individuals. Colonial rule, जब ब्रिटिशर्स का रूल था तब हमें पता है हमने कितने ज़्यादा अन्याय झेले हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमें ऐसे फंडामेंटल राइट्स, हमारे ऐसे मूलभूत अधिकार, हमारे ऐसे मौलिक अधिकार विच आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड राइट्स ऑफ पीपल, जो कि उस स्टेट के लोगों के लिबर्टी को, उनकी आज़ादी को और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं। ऐसे फंडामेंटल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये राइट्स हमें बचाते हैं किसी भी तरह के अन्याय से। और जो गवर्नमेंट है, जो इस वक्त अथॉरिटी में है, वो इस हमारा कोई भी शोषण नहीं कर सकती। ये हमें फायदा मिलता है जस्ट ड्यू टू आर फंडामेंटल राइट्स। मोर ओवर द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटी। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स, देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स, एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज। अब जो माइनॉरिटी में लोग थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या जो अदर माइनॉरिटीज थी, उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी रूल्स बनने चाहिए वरना हमारा शोषण हो जाएगा। तो अंबेडकर, जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने बोला कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स में हम तुम्हें ये राइट भी देते हैं कि मेजॉरिटी तुम पे अपना कोई शोषण नहीं कर सकती, तुम्हें राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज दिए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये टू फोल्ड है, अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे क्या राइट्स हैं तो तुम्हारी गलती है, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। माइनॉरिटीज से उन्होंने कहा तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे क्या क्या राइट्स हैं, उनका फ़ायदा उठाओ। तुम फ़ायदा उठाओ मतलब अगर तुम्हारे पे शोषण हो रहा है तो तुम उसको बोलो कि नहीं, मेरा ये राइट है, तुम मेरे पे शोषण नहीं कर सकते। और जितनी भी पावर मेकिंग अथॉरिटीज हैं, जो लॉज बनाती हैं, उन्हें कहा गया कि वो हमेशा इन राइट्स के मुताबिक ही लॉज बनाएं। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए ही, साथ ही एक और सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसे कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। दिस सेक्शन वॉज डिजाइन बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस. और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसे रूल्स बनाए गए, ऐसे लॉज, ऐसे रिफॉर्म्स तैयार किए गए जिनसे हम तत्कालीन उस टाइम के भारत की जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन थी उसको अच्छा कर सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके और लोगों की गरीबी मिटा सके. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहला आता है राइट टू इक्वालिटी. All persons are equal before the law. This means that all persons shall be equally protected by the laws of country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, etc. The state cannot discriminate against anyone in matters of employment. But there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability also has been abolished. He says that कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स के तहत हमें पहला राइट दिया है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी मतलब किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं हो सकता उसके धर्म के स्तर पे या उसके वो किस जेंडर से बिलोंग करता है या किस कास्ट से बिलोंग करता है, इस किसी भी स्तर पे उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. सब एक समान है, सब एक है और सबको हर जगह जाने की अनुमति है. जहाँ जाना है, होटल, प्लेग्राउंड, शॉप, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है. सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी एक समान तरीके से. ये नहीं होगा कि मेजॉरिटी को या अपर कास्ट को नौकरी मिलेगी, लोअर कास्ट को नहीं मिलेगी या माइनॉरिटी को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है. सब एक है. और अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर दी कॉन्स्टिट्यूशन ने कि छुआछूत जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, सब इक्वल हैं, सब टचेबल हैं, कोई अनटचेबल नहीं है, सबके पास समान अधिकार हैं, तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. राइट टू फ्रीडम ये हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है. दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस. आपको पता है आप कहीं भी जा सकते हो, जिस शहर में रह रहे हो शहर से भारत में किसी भी दूसरे शहर में चले जाओ, दूर से दूर कोई रोकेगा आपको? नहीं रोकेगा. आपको बड़े हो के कोई भी प्रोफेशन बनना है, टीचर बनना है, पायलट बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई रोक टोक है? नहीं है. आपको जो बनना है आप बनो. तो राइट टू फ्रीडम हमें यही राइट प्रोवाइड करता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम हमारे पास अधिकार है कि हम अपने हमारे मन की कोई भी बात है हम वो बोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है हमारे बोलने पे. हम कोई भी ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, कैसी भी एसोसिएशन बना सकते हैं, किसी भी लोग के साथ उठ बैठ सकते हैं, अपने भारत के किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हैं और कोई भी नौकरी, बिजनेस या ऑक्यूपेशन कर सकते हैं. थर्ड आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देता है जिसके अकॉर्डिंग ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को. ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं कि इंसानों की लेन देन, खरीदारी, बेचे जाना इंसानों को, जिसमें कि ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चे शामिल होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है ताकि उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा सके उनकी इच्छा के विरुद्ध, और उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते इसके लिए और उन्हें बेचा जाता है उनकी इच्छा के विरुद्ध. ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता है बिना उन्हें पैसे दिए. और 14 साल से कम उम्र के बच्चों के अगर काम कराया जा रहा है, उनसे काम कराया जा रहा है, उन्हें नौकरी दी जा रही है, और अगर वे 14 साल से कम उम्र के हैं तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सख्त खिलाफ है इसके. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं आता, ये एक ऑफेंस है, इसके तहत आपको सज़ा मिल सकती है. तो ये सारे फायदे हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से मिलते हैं. चौथा आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स. हमारे पास फ्रीडम है, हम जो धर्म चाहें वो मान सकते हैं, जो भी हम रिलीजन चाहें वो फॉलो कर सकते हैं, उसकी टीचिंग्स पढ़ सकते हैं और उस रिलीजन को फैला भी सकते हैं और लोगों में, इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है. फिर पांचवा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक. हमारा जो पांचवा पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स मिलते हैं. के द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. If I belong to a certain culture, मैं अपने किसी एक संप्रदाय से belong रखती हूँ और मुझे उस संप्रदाय के teachings, उस संप्रदाय की जो सीख है वो मुझे और लोगों में बांटनी है, तो मैं अपना एक स्कूल खोल सकती हूँ खुद से और मैं उसमें लोगों को पढ़ा सकती हूँ अपना धर्म या अपनी टीचिंग जो सिर्फ शायद सिर्फ मैं मानती हूँ और कोई ना मानता हो, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है। आप जो चाहें आप वो रिलीजियस या कल्चरल अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आपके पास पूरा राइट है कि आप अपनी कल्चर और एजुकेशन को पूरी तरह से फ्रीली प्रोपोगेट करें और प्रिजर्व करें। सिक्स्थ आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस अलाउ सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। ये राइट हमें कहता है कि लोग कोर्ट में जा सकते हैं अगर उन्हें लगे कि उनका कोई भी फंडामेंटल राइट उनसे छीना गया है, तो उनके पास ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है कि वो कोर्ट में जाके केस दाखिल कर सकते हैं कि हमारा ये राइट छीना गया है। पांचवा पॉइंट आता है सेक्युलरिज्म का। अ सेक्युलर स्टेट, अब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हुए बच्चों। अब हम वापस की फीचर पे आ रहे हैं। की फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पांचवा है सेक्युलरिज्म। बच्चों सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदी में वर्ड यूज होता है धर्म निरपेक्षता, यानी नो इन्फ्लुएंस और इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी एजुकेशन और गवर्नमेंट। यानी धर्म किसी भी रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा सामाजिक या स्टेट की या गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी या लॉ को बनाने में। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter. आने वाले चैप्टर में हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। और इसके अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन के पास ये हक नहीं है कि वो स्टेट का रिलीजन कहला सके। यानी स्टेट किसी एक रिलीजन को स्टेट का रिलीजन नहीं मानती इंडिया में। इंडिया के अकॉर्डिंग हर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर एक रिलीजन इक्वल है और हर धर्म को बराबर हक है। You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. Just like in the game of football, a change of constitutive rules will affect the game. Indian constitution has been amended over the years to reflect new concerns of the policy. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy. हमने देखा कि कैसे जरा जरा से changes एक बड़े से football game में बहुत बड़े changes ला सकते हैं। छोटे छोटे changes football game को football game नहीं रखेंगे, football game नहीं कहलाएगा अगर हम उसकी rules में change करेंगे। तो ऐसे ही कुछ changes होते हैं, पर constitution हमारे इंडियन constitution में time के साथ, क्योंकि समाज बदलता है, हालात बदलते हैं, economic, social तरीके से बहुत changes आते हैं दुनिया में जैसे जैसे time बीतता है, तो इस तरह से demand होती है कि हम इंडियन constitution में भी changes लाएं जो कि उस वक्त के लोगों के हिसाब से सही हो। तो ये सब amendments होते रहते हैं constitution में, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। The different features of the Indian Constitution outlined above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book as well in your highest classes, you will read more about these different features of Indian Constitution and understand more substantively what they mean. अभी ये बहुत बड़े भारी भरकम words थे जिनको अभी हमने describe किया, हमने पढ़ा है। इनका बहुत डीप मीनिंग जानना, एक्चुअल में इनका क्या मतलब है ये जानना, अगर आपको अभी मुश्किल लगा है तो बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में और आगे की क्लासेस में हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पर कोशिश की गई कि आपको मैं इजी भाषा में समझा सकूं हमारी कॉमन लैंग्वेज में कि एक्चुअली इन सारे की फीचर्स का क्या मतलब है और ये आपके लिए क्या मतलब रखते हैं। The constitution also mentions fundamental duties. Find out with the help of a teacher what these include and why is it important for citizens in a democracy to observe these. Fundamental duties kya hoti hain? Ye hum janenge ki kaise hamare as a Indian citizen hamari kya duties banti hain hamare desh ke liye. Desh ne to hume itne sare rights de diye par hamari kya duties banti hain? Ye hum discuss karenge और इधर बगल में एक पिक्चर्स गिवन है, द अबव फोटोज शो वेरियस मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइनिंग अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट इट्स फाइनल सेशन ऑन 24 जनवरी 1950। ये 24 जनवरी 1950 में जो फाइनल सेशन था, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी साइन की जा रही है बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो फाइनल सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, उसमें अब फाइनल कॉपी साइन की जा रही है जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया बाय द मेंबर्स। द फर्स्ट फोटो फ्रॉम टॉप, ये पहली फोटो में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो साइन कर रहे हैं, दूसरी में राजेंद्र प्रसाद हैं जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। द लास्ट फोटो शोज फ्रॉम राइट लेफ्ट श्री जयराम दास दौलत राम जी, मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर जो थे। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर जी हैं जो हेल्थ मिनिस्टर थी। उसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे आज़ाद भारत के, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं श्री जगजीवन राम जी जो कि लेबर मिनिस्टर थे। ये सब मिनिस्टर्स की पिक्चर है बच्चों। और अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है। Why does a democratic country need a constitution? ये सारे हमने उस सेक्शन में पढ़े हैं, Why we need a constitution वाले first part of the audio जो है उसमें डिस्कस हुआ है ये क्वेश्चन। Look at the wordings of the two documents given below. The first column is from 1990 Nepal और second from the recent constitution of Nepal. तो अब ये पूछ रहे हैं कि डिफरेंस क्या है, इन हु एक्सरसाइजेस एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबव टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले में ये कह रहे हैं 1990 वाले में कि पावर्स किसके हाथ में थी, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है कि कौन एक्सरसाइज कर रहा है पावर। डिफरेंस ये है कि पहले में राजा और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर, जो कि बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक है, लोगों की नहीं सुनी जाएगी, जो वे चाहे वो कर सकते हैं, वैसे रूल्स बना सकते हैं। इधर जब 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या था, एग्जीक्यूटिव पावर जो है होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ जो बना जाएगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके से अपॉइंट किए हैं, इलेक्ट किए हैं। What would happen? Third question है, What would happen if there was no restrictions on the power of elected representatives? अगर elected representatives की powers पे कोई restriction नहीं होगा तो वो गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, वो एक dictatorship जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, वो अपनी अपनी चला सकते हैं और लोगों के साथ अन्याय कर सकते हैं, उनके अधिकारों का शोषण कर सकते हैं। फोर्थ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी हमें बतानी है इन सिचुएशन में। एक स्कूल में 30 टीचर हैं, 20 उसमें से मेल हैं, तो माइनॉरिटी कौन हुई, female teachers. And do you think, why you think it is important to respect the views of minority in each of these institution? अब ये कह रहे हैं कि क्यों जरूरी है कि माइनॉरिटी का भी व्यू रखा जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो टीचर्स हैं, भले ही वो कम हो फीमेल टीचर्स नंबर में, पर दे आर इक्वली एजुकेटेड एज द मेल टीचर्स, तो उनका भी मत रखा जाना चाहिए। इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट, 5% बुद्धिस्ट हैं, यानी माइनॉरिटी में बुद्धिस्ट हैं, पर क्योंकि वो भी एक इंसान है, ह्यूमन है, और उनके पास बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसलिए उन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। एक फैक्ट्री में मेस में 80% वेजिटेरियन है, पर जो 20% नॉन वेजिटेरियन है उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें क्रिटिसिज्म नहीं मिलना चाहिए, उनके साथ भी इक्वल राइट्स शेयर होने चाहिए। इन अ क्लास 50 स्टूडेंट्स की क्लास में 40 बिलोंग करते हैं वेल ऑफ फैमिली, बहुत ही रिचर और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, 10 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नॉट सो वेल ऑफ फैमिली, दे आर क्वाइट पुअर यू कैन से, वो ज़्यादा 10 स्टूडेंट्स थोड़े गरीब हैं, तो क्या उनके साथ भेदभाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी उसी क्लास में पढ़ रहे हैं और वो भी उतने ही इंटेलिजेंट हैं, इसलिए वो उसी क्लास में बैठे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि आप इस जो वर्ड्स लिखे हैं उनका सिग्निफिकेंस, जो की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका सिग्निफिकेंस करें। तो ये हमने इतना सारा पूरा पैराग्राफ कवर किया है, तो एक बार हम फिर भी दोबारा से आपको थोड़ा पॉइंट्स बता देते हैं। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या था, संघ, मैंने बताया था कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। और उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या है सिग्निफिकेंस, कि इससे क्या होता है, वाइटल चेक और बैलेंस होता है, हर एक टायर जो गवर्नमेंट का है वो चेक और बैलेंस रखता है दूसरे टायर पे, कोई अपनी पावर का गलत यूज नहीं कर सकता, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता ब्रांचेज आपस में, और टिरेनी जो क्रूअल और अनफेयर यूज है पावर का वो नहीं होता है जब सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। फंडामेंटल राइट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, फंडामेंटल राइट्स का तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आज़ादी को, हमारी लिबर्टी को, और हमारे जो लॉ हैं, जो हमारे राइट्स हैं, उनके वायलेशन, कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे राइट्स का वायलेशन ना कर सके, जो इस वक्त हमने लोग चूज किए हैं, जो लीडर्स हैं, वो हमारे राइट्स का वायलेशन कभी ना कर दें, उससे हमें कौन बचाता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। पांचवा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फायदे ये हैं बच्चों कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, सिग्निफिकेंस ये है कि एफिशिएंसी बढ़ी रहती है, लोग गवर्नमेंट है तो एक कैबिनेट है वो साथ में काम करेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों को जवाबदेही उनकी बनी रहेगी, जो डिक्टेटरशिप नहीं होगी, एग्जीक्यूशन होगा लॉज का, लेजिस्लेचर का, जल्दी डिसीजन मेकिंग होगी क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ओपोजिशन पार्टी हमेशा रहेगी, उनकी बैड, जो इस वक्त पार्टी पावर में है उसकी बैड पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए ओपोजिशन पार्टी रहेगी, तो वो अपनी अपनी नहीं चला पाएंगे। सिक्स्थ आता है कि इन बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की नेबरिंग कंट्रीज। तो अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो बांग्लादेश को बॉर्डर कर रही है वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भूटान को बॉर्डर कर रही है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। और नेपाल को बॉर्डर कर रही है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड। फिर ग्लोसरी प्रोवाइडेड है एड में बस, जिसमें सारी डेफिनेशंस लिखी हैं कुछ की वर्ड्स की, तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं इसको हिंदी में आपको समझा रही हूँ। जैसे आर्बिट्ररी है फर्स्ट, तो उसमें लिखा है व्हेन नोटिंग इज फिक्स्ड एंड इज इंस्टेड लेफ्ट टू वंस जजमेंट और चॉइस, दिस कैन बी यूज्ड टू रेफर टू रूल्स दैट आर नॉट फिक्स्ड और डिसीजन दैट हैव नो बेसिस। यानी आर्बिट्ररी, यानी जिसके जो फिक्स ना हो, जो कोई भी मीनिंग ले सके अकॉर्डिंग टू द पीपल। आइडियल है, आइडियल वर्ड का है कि अ गोल और अ प्रिंसिपल इन इट्स मोस्ट एक्सीलेंट और परफेक्ट फॉर्म। आइडियल यानी एक गोल या एक प्रिंसिपल बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो अपनी फॉर्म में लिखा हो, यानी उससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता, तो उसको आइडियल बोलते हैं। इंडियन नेशनल गवर्नमेंट के बारे में लिखा है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में लिखा है, इमर्ज इन 19th सेंचुरी इंडिया एंड सो थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन कमिंग टुगेदर टू फाइट ब्रिटिश रूल, दिस कल्मिनेटेड इन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947। यू विल लर्न अबाउट दिस इन ग्रेटर डिटेल इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक दिस ईयर। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पता ही है, 1947 में इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, उससे पहले ब्रिटिशर्स से जो हमने लड़ाई की इंडियंस ने आज़ादी पाने के लिए, उसे ही इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा जाता है। ये आप अपनी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पॉलिटी में लिखा है अ सोसाइटी दैट हैज़ एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक, कोई भी समाज जिसमें एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, जैसे इंडिया में हमें एक डिफाइंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कि वी आर अ डेमोक्रेसी, तो वो पॉलिटी कहलाती है। सॉवर्न इन द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू एन इंडिपेंडेंट पीपल। सॉवर्न यानी इंडिपेंडेंट पीपल, जो कि जिन पे किसी का कोई बंधन नहीं हो, जो इंडिपेंडेंट हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग द प्रैक्टिस ऑफ द इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इट रेफर्स टू इलीगल ट्रेड इन ह्यूमन बींग्स पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो मैंने वही बताया कि किसी भी सामान का नेशनल बॉर्डर से आदान प्रदान, खरीदना और बेचना ही ट्रैफिकिंग कहलाता है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ह्यूमंस आ जाते हैं कि उन्हें बेचा और खरीदा जाता है, और इसमें खासकर महिलाएं और बच्चे इसका शिकार होते हैं। टिरानी द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी, अपनी पावर्स का गलत तरीके से यूज करना टिरानी कहलाता है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। रिवाइज कीजिए और क्वेश्चंस एक बार और अपने दिमाग से सोच के लिखिए। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।